अपने विनित कृतांजलि ज्ञापन करते हैं और अपने विनित प्रणति भी निवेदन करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य अवतार है, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ विशेष वरदान प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे। अनर्पित तरिन चिरा करुणया अवतीर्ण से समर्पयित उन्नत उज्जवल रसम शोभचिष्य हरी पुरट सुंदर द्वितीय कदम संदित सदा हृदय कंदर स्वरूप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये अनर्पित करिंचिरा ये उस वस्तु को प्रदान करने के लिए आए थे, प्रदान नहीं की गई थी और वो वस्तु इस कलयुग में अवतरित होकर प्रदान करने के लिए आए वो है उन्नत उज्जवल रसम शोभचिष्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपना गुप्त धन जो स्वभक्ति है स्वभक्ति स्वयं, तो अपना गुप्त धन स्वभक्ति और वो किस प्रकार की भक्ति है उन्नत उज्जवल रसम, तो सारे रसों में जो सर्वश्रेष्ठ रस है श्रृंगार रस, ऐसे मुख्यतः पांच रस हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, किंतु इनमें श्रृंगार रस श्रेष्ठ रस कहा गया है। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधारणी में वो प्रेम परिलक्षित होता है, इसलिए इस प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसको ब्रज प्रेम कहते हैं। यद्यपि भगवान की भक्ति इसके पहले भी प्रचलित थी, किंतु वो भक्ति विशेष रूप से वैधी भक्ति थी, किंतु ये जो रागा तो भगवान ने कभी प्रदान नहीं किया। तो ये इस प्रेम को व्रज प्रेम को विशेष रूप से प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, इसलिए यहाँ कहा गया है कि अनर्पित तरिन चिरा, अनेक कालों से ये अनर्पित था, ये अर्पित नहीं हुआ था। तो ये जो ब्रज प्रेम है इसको प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं हरि पुरत सुंदर देते, ये जो स्वर्ण जो पका हुआ स्वर्ण जो अग्नि में जला हुआ स्वर्ण उसकी ज्योति जो है ये इसको कहा जाता है तप्त कांचन वर्ण, तप्त सोने का वर्ण, तो उस प्रकार की ज्योति को धारण किए हुए भगवान अवतरित हो रहे हैं और वो भगवान श्री कृष्ण जो कि तप्त कांचन वर्ण को धारण किए हुए अवतरित हुए जो सचिनंदन नाम से प्रसिद्ध है जो माता सती के गर्भ से उदय उदित हुए थे, सती गर्भ सिंधु से उदित हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उस सत्यनंदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभु हमारे हृदय में नित्य प्रति विराजमान रहे। तो इस चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार हुआ इस अवतार से पहले भगवान श्री कृष्ण जो कि नित्य गोलोक में विहार करते हैं तो वो सोच रहे पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण भगवान है, सारे अवतारों के स्रोत हैं, मूल है, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। तो पूर्ण भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र कुमार है, ये गोलोक है ब्रजेर सह नित्य विहार, ये गोलोक में ब्रज के साथ नित्य विहार करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण हर युग में अवतरित नहीं होते हैं या हर द्वापर युग में अवतरित नहीं होते हैं, ये ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं, और वो भी तब जब सप्तम मन्वंतर में, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, 14 मनु आते हैं, और एक एक मनु का जो शासन काल है वो 71 दिव्य युग है। एक दिव्य युग उसको कहा जाता है जो सत्य त्रेता द्वापर और कलि, ये चार युग मिलने से एक दिव्य युग होता है। और इस प्रकार 71 दिव्य युग एक मनु का शासन काल होता है, और इस प्रकार 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। तो यदि हम इसका हिसाब लगाएं तो कलयुग की जो अवधि है ये है 432,000 वर्ष, और द्वापर युग कलयुग की अवधि के दो गुना अर्थात 864,000 द्वापर युग की अवधि, द्वापर युग का समय, कलयुग का समय 432,000, द्वापर युग का उसका डबल, दो गुना, तो 864,000 वर्ष द्वापर युग, और त्रेता युग का समय कलयुग के समय के तीन गुना, आप गिनती करिए 13,00,000 कुछ वर्ष समय, और सत्ययुग 4 गुना है, कलयुग के समय के 4 गुना है सत्ययुग का समय। तो ये चार युगों को मिलाने से ये 43,00,000 कुछ वर्ष होंगे, ये एक दिव्य युग का समय, और इस प्रकार उसको 71 में गुने तो एक मनु का शासन काल हो, और इस प्रकार 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, तो ये 1,000 दिव्य युग करीब होगा ब्रह्मा का एक दिन। तो इसमें जो सप्तम मन्वंतर है, जो वैवस्वत मनु का मन्वंतर, अब वो चल रहा है सप्तम मन्वंतर, वैवस्वत मनु का शासन काल अब चल रहा है। तो वैवस्वत मनु के शासन काल में जब 28वां दिव्य युग आता है, उस दिव्य युग में जो द्वापर आता है उसी में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो, तो अभी वैवस्वत मनु का 28वां दिव्य युग चल रहा, और इसमें जो द्वापर आया था उसमें भगवान कृष्ण ब्रजनंदन कृष्ण अवतरित हुए, कि हर द्वापर में नहीं आते भगवान, और जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं ठीक उस द्वापर के पीछे जो कलयुग आता है, उसके बाद जो कलयुग आता है उस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते, हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं होते। तो जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे ठीक उसके बाद जो कलयुग आएगा उसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब वो द्वापर युग में अवतरित हुए तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा रो एक दिन तेहू एक बार अवतरण हया करे न प्रकट अभ्यास दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त रस कृष्ण तारा रस। तो ये चार भावों में जो भक्त लोग हैं उनके वशीभूत होते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो दास्य भाव के भक्त सख्य वात्सल और माधुर्य भाव के भक्तों के वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हया दास सखा पिता माता कांता गण लया ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट। तो इस प्रकार अपने दास सेवक सखा और पिता माता और कांता इनको लेकर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करने के उपरांत वो अपने स्वधाम में चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और अप्रकट होकर वो सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से मैंने ये प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया है, ऐसे तो विधि भक्ति तो उपलब्ध है। विधि भक्ति में भगवान कृष्ण सोचते हैं कि जो लोग विधि भक्ति करते हैं अर्थात नीति नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये लोग विधि भक्ति करके वैकुंठ जाते हैं। विशेष रूप से जो दूसरे चार संप्रदाय हैं, दूसरे तीन संप्रदाय हैं, इसमें विशेष रूप से विधि भक्ति प्रचलित है। और विधि भक्ति करने से भक्त वैकुंठ को प्राप्त करता है, किंतु गोलक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकता विधि भक्ति करके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से मैंने ये प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया है, विधि भक्ति तो उपलब्ध है किंतु प्रेम भक्ति मैंने प्रदान नहीं किया है, और बिना प्रेम भक्ति के कोई गोलक वृंदावन जा ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल और प्रेम नहीं मरो प्रीत। जो लोग मेरे ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट हैं, अर्थात भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य जो है, जो उनको भगवान के रूप में मानते हैं और इस प्रकार उनकी भक्ति विधि पूर्वक करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें मेरी प्रीति नहीं है, उतनी प्रीति नहीं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है ना ही मोर प्रीत। क्यों क्यों प्रीति नहीं है? कहते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान ते विधि भजन करिया वैकुंठ के जाए तत्र विधि मुक्ति पाए। कि ऐश्वर्य ज्ञान में लोग मुझे भगवान के रूप में पूजा करते हैं और इस प्रकार मेरी पूजा करके वो वैकुंठ को जाते हैं, चार प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और वो चार प्रकार की मुक्ति क्या क्या है? सारूप्य, सामित्य, शास्त्री और सालोक्य। साहित्य मुक्ति को भक्त लोग प्राप्त नहीं करते हैं, ये सब मायावादी लोग प्राप्त करते हैं, भगवान में मिलना ये साहित्य मुक्ति कहा जाता है। इसलिए भक्त लोग ग्रहण नहीं करते हैं ये साहित्य मुक्ति, भगवान भगवान में लीन होना नहीं चाहते हैं, भक्त लोग तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए चार प्रकार की मुक्ति को भक्त लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये जो विधि भक्ति करते हैं ये चार प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होते हैं और वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, किंतु ये लोग गोलक वृंदावन नहीं आ सकते। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि जुगा धर्म प्रवर्तायम नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचानुभवन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं युग धर्म का प्रवर्तन करूंगा और चार भाव की भक्ति देकर समस्त जगत को नचाऊंगा। तो चार भाव की भक्ति क्या है? ये दास्य सख्य वत्सल और माधुरी। ये चार भाव की भक्ति प्रदान करके मैं सारे जगत को नचाऊंगा और इस प्रकार मैं युग धर्म का प्रवर्तन भी करूंगा। तो युग धर्म प्रवर्तन ये कोई भी कर सकता है, कोई भी अवतार कर सकता है। इसलिए युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान कृष्ण को अवतरित होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश है, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युग धर्म का प्रवर्तन मेरा अंश कोई भी अंश कर सकता है, दूसरा अवतार कर सकते हैं, किंतु आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते, किंतु मेरे बिना अन्य कोई ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। केवल भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही इस ब्रज प्रेम को प्रदान करने में समर्थ है, दूसरे अवतार प्रदान नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण का ये चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये विशेष रूप से ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप ये ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ये ब्रज प्रेम किस प्रकार प्रदान करते हैं, ना नाम संकीर्तन के माध्यम से, नाम प्रेम प्रदान करते हैं। जो युग धर्म नाम संकीर्तन है और उस युग धर्म नाम संकीर्तन के माध्यम से वो प्रेम प्रदान करते हैं, नाम प्रेम। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये जो ब्रज प्रेम मुझे प्रदान करना है तो उसको मैं तब तक प्रदान नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं भक्तभाव अंगीकार नहीं करता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने ना कहले धर्म सिखाना ना जाए, यदि स्वयं मैं आचरण नहीं करता हूं तो हम दूसरे को ये धर्म सिखा नहीं सकते, केवल स्वयं आचरण से ही कोई दूसरों को सिखा सकता है, केवल उपदेश देने से लोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि आपने ना कहले धर्म सिखाना ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत है। जब तक मैं स्वयं इस धर्म को आचरण करके नहीं सिखाता हूं तो इसको सिखाना संभव नहीं होगा। और ये गीता और भागवत में भी यही कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तब तत् तरोजना, इस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्तिगण आचरण करते हैं उनको देखते हुए इतर जन उनका अनुकरण करते हैं, ये गीता और भागवत का सिद्धांत है। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि जब तक मैं स्वयं आचरण नहीं करूंगा तब ये धर्म की शिक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ये भक्त भाव को अंगीकार करने के लिए चाह रहे हैं, भक्त भाव को अंगीकार करके ये भक्ति की शिक्षा प्रदान करेंगे जगत में, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे तो उस समय कलयुग का समय आकर उपस्थित हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय अवतरित हुए कलि के प्रथम संध्या में, और उनके अवतार का क्योंकि कलयुग का युग धर्म प्रवर्तन और उसके साथ साथ ये ब्रज प्रेम प्रदान, कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन के माध्यम से ये प्रेम प्रदान ये भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये कारण हेतु कहा गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार के दो प्रकार के हेतु हैं, कारण है। एक तो बाह्य कारण है, दूसरा है अंतरंगा कारण या गुह्य कारण। तो बाह्य कारणों में ये दो कारण मुख्य है, एक तो युग धर्म प्रवर्तन करना और ब्रज प्रेम को प्रदान करना, ये दो कारण है। और तीसरा कारण है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, क्योंकि जब अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार थे तो ये पहले इनका अवतार हुआ था, अद्वैत आचार्य का चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले। और अद्वैत आचार्य ने देखा कि सारे संसार में लोग केवल भोग में लगे हुए हैं, कोई पाप कर्म करके भोग में लिप्त है, कोई पुण्य कर्म करके भी भोग में लिप्त है, कोई पुण्य कर्म करता भी है तो भोग के लिए करता है, जैसे मंदिर में पूजा अर्चना कोई धर्म अनुष्ठान इस पुण्य कर्म माना गया है, लेकिन लोग इसको करते हैं भोग के लिए। तो इस प्रकार सारे जगत को भोग में लिप्त देखकर अद्वैत आचार्य का हृदय बहुत दुखी होता, और उस समय विशेष रूप से नवदीप की जो स्थिति थी वो स्थिति भी विषम स्थिति थी, क्योंकि लोग भगवान विष्णु की पूजा को छोड़ करके कोई चांदी की पूजा, जैसे चैतन्य भागवत में कहा गया है कि लोग सब मंगल चंडी की पूजा करते थे, तो ये चंडी की पूजा करते थे लोग, और चंडी पूजा के नाम पर तंत्र मंत्र की साधना करते थे और पशु बलि भी देते थे चंडी को संतुष्ट करने के लिए, और पशु बलि देकर उसके मांस को खाते थे, प्रसाद मां का प्रसाद है ये मान करके उसको खाते थे, तो बोलते थे कि ये तो मां का प्रसाद है हम खा रहे हैं। तो इस प्रकार चारों ओर पशु हिंसा, तंत्र मंत्र की साधना और भोग की प्रवृत्ति चारों ओर परिव्याप्त है, कोई विष्णु की पूजा नहीं कर रहा। बहुत कम लोग थे जैसे श्रीवास पंडित और ऐसे कुछ चंद्रशेखर आचार्य, ऐसे कुछ लोग थे जो विष्णु की पूजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, इनका जन्म पहले हो गया था, इस आविर्भूत हो गया, तो ये लोग विष्णु की पूजा एकमात्र करते थे। और अद्वैत आचार्य और ये वैष्णवगण मिलते थे आपस में, और जब मिलते थे तो मिलकर वो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण की चर्चा करते थे, कृष्ण कथा में समय अतिवाहित करते थे, और इस प्रकार वो थोड़ा बहुत अपने आप को आश्वासन देते थे जब सत्संग करते थे। अन्यथा बाहर वो लोग देखते थे कि कोई भी कृष्ण पूजा में आग्रह नहीं रखता है, कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेता है। तो इस प्रकार संसार को देखकर विश्व व्यथित थे भक्तगण वैष्णव, क्योंकि वैष्णवगण परम कृपालु होते हैं, और परम कृपालु होने के कारण वो दूसरों का दुख नहीं देख सकते, और वैष्णवगण देखते थे कि लोग इस प्रकार भोग में लिप्त होकर वस्तुतः दुख भोग कर रहे हैं, ये भोग में भोग नहीं कर रहे हैं, ये जिसको भोग मानते हैं ये तो सब दुख का मूल कारण है। तो ये सोचकर कैसे जगत का उद्धार होगा इसके लिए सब चिंतित थे, और उनमें जो वैष्णव में प्रमुख थे अद्वैत आचार्य, वो इस चिंता में वो चाहते थे कि जगत का किस प्रकार उद्धार हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक भगवान स्वयं अवतरित नहीं होते हैं और स्वयं अपने भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं तो ये सारे जगत के लोगों का उद्धार नहीं हो, संभव नहीं, इनका उद्धार और कोई नहीं कर सकता। ये सोचकर चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य ने मन में ये निश्चय किया कि मुझे भगवान कृष्ण को पुकारना है, उनको बुलाना है, अवतरित होने के लिए उनको प्रेरित करना है, जगत के उद्धार के लिए अब भगवान कृष्ण को स्वयं आना होगा। यह सोचकर अद्वैत आचार्य ने भगवान की आराधना की, शालिग्राम शिला की आराधना, नित्य प्रति गंगा जल और तुलसी मंजरी प्रदान करके उन्होंने की, और हुंकार के साथ उन्होंने कृष्ण का आह्वान किया अवतरित होने की। तो इस प्रकार जब से अद्वैत आचार्य ने, जो कि स्वयं महाविष्णु के अवतार थे और जिनके कारण ये सृष्टि संभव होती है, अद्वैत आचार्य के कारण, महाविष्णु के कारण, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, आदि पुरुष परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा, अर्थात उन्होंने भगवान की सेवा करते हुए गंगा जल और तुलसी मंजरी प्रदान करते हुए भगवान का आह्वान किया। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान को सुनकर, क्योंकि अद्वैत आचार्य की महाविष्णु के अवतार थे फिर भी वो भक्त का अभिनय कर रहे थे, इसलिए उनको भक्त अवतार कहा गया। तो ये भक्तों में वैष्णव प्रमुख थे, तो उनकी पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, ये कहा गया। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के ये तीन बाह्य कारण, एक है युग धर्म प्रवर्तन करना, इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। दूसरा है नाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम प्रदान करना, और तीसरा है अद्वैत आचार्य का आह्वान। चार से तीन बाह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, और तीन गुह्य कारण है, अंतरंग कारण है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। क्योंकि ये जानना भी आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो क्यों अपना श्याम वर्ण त्याग करके गौर वर्ण धारण किए। क्योंकि भगवान का वर्ण श्याम वर्ण होता है, किंतु चैतन्य अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गौर वर्ण धारण किया। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसलिए उन्होंने गौर वर्ण धारण किया, गौर वर्ण कांति उन्होंने धारण किया। तो इसका जो कारण है ये भगवान का निजी कारण है, ये तो सब बाह्य कारण बताया गया, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। किंतु ये जो निजी कारण है भगवान श्री कृष्ण का, उसके संबंध में श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ। तो श्रीराधया प्रणय महिमा पितृ स्वभाव मदीय, तो ये भगवान श्री कृष्ण इसलिए अवतरित हुए, उनके जो निजी कारण है उसके संबंध में कहते हैं कि श्रीराधया प्रणय महिमा। तो श्रीमती राधारानी की प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा क्या है, कैसी है वो महिमा, उसको जानने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो राधा रानी का जो प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना गया है। जिस प्रकार ये शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से ब्रजवासियों के प्रेम से, प्रेम के प्रति वो आकृष्ट थे, और विशेष रूप से ब्रजवासियों में जो गोपियां थी उनके प्रेम से वो विशेष रूप से आकृष्ट थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि हे गोपियां, न पा रहे हम निरवत्त संयुजा स्वसाधु कृत्यं द्विवधायुषा पिवा जावन भजन दुर्जय गेह श्रृंखला। तो भगवान इसलिए गोपियों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकता, मेरे पास तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने के लिए कुछ नहीं है। स्वयं भगवान अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं गोपियों के प्रेम के सामने, और इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि जिन लोगों ने भगवान कृष्ण का भजन किया है, और किस प्रकार भजन किया है, जामन भजन अभजन दुर्जर गृह श्रृंखला, जो जिस गृह श्रृंखला को त्याग करना इतना सरल नहीं है, अर्थात घर परिवार का जो बंधन है इसको त्याग करना इतना आसान नहीं। लोग अधिकतर परिवार के प्रति, घर के प्रति आकृष्ट रहते हैं, और यहां तक कि लोग साधु संत बनने के बाद भी घर के प्रति आकृष्ट रहते हैं। साधु बन गए हैं फिर भी घर के प्रति आकृष्ट है, घर जाने की इच्छा है। किंतु ये गोपियां इस दुर्धर गृह श्रृंखला को भी उन्होंने त्याग दिया था। ये गृह का जो बंधन है, परिवार का जो बंधन है, इसके प्रति लोग साधारण रूप से आकृष्ट हैं, उसको भी हम लोगों ने त्याग दिया था। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। केवल गृह की श्रृंखला नहीं है, गृह का बंधन, पारिवारिक बंधन, समाज का बंधन, पिता माता बंधु बांधव पति पुत्र कन्या, इसको त्यागना बहुत कठिन है। व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है, किंतु परिवार का बंधन त्याग नहीं सकता, पिता माता भाई बंधु कुटुंब का बंधन त्याग नहीं सकता। किंतु इन गोपियों ने भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए इस सब कुछ ऋणी हो गए, और इस ऋण को चुकाने के लिए अपने असमर्थ, तो इसलिए गोपियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए अपना मान अपमान और अपना गृह परिवार सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, तो इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधारानी। इसलिए श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है, उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया। गोपियों में राधारानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम। ये सारी गोपियां ये तो राधारानी के प्रेम की वृद्धि के लिए ही सहायिका है, ये सहायता करती। तो श्री चैतन्य दत्तानुत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधारानी के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुणा क्षणी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधारानी ये महाभाव स्वरूपा है, महाभावमयी है, और सारे गुणों के भंडार है। तो इस प्रकार समस्त कृष्ण कांताओं में अर्थात कृष्ण की प्रेयसियों में श्रीमती राधारानी शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार श्रीमती राधारानी का जो प्रेम कृष्ण के प्रति, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण कहे आमी हई रसेर निदा। कृष्ण कहते हैं कि मैं रसों का आगार भंडार। इसलिए भगवान कृष्ण रसराज कहे जाते हैं, रस रस के मूर्तिमंत स्वरूप है। किंतु पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराये उन्न। किंतु श्रीमती राधारानी का जो प्रेम, यद्यपि मैं चिन्मय पूर्ण तत्व हूँ, मैं किसी के आनंद के लिए मैं किसी की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, आनंद की प्राप्ति के लिए मैं पूर्णानंदमय हूँ, फिर भी ये राधारानी का जो प्रेम है वो मुझे उन्मत्त करा रहा है। यद्यपि मैं किसी के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता, सारा जगत मेरे प्रति आकृष्ट होता है, और आनंद अनुभव करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये राधारानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है। और राधारानी के प्रेम से मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। ना जाने राधार प्रेमे अच्छे कतवल जे बोले हमारे करे सर्वदा विवल। तो मुझे ये पता नहीं है कि राधारानी के प्रेम में कितनी शक्ति है, जिससे कि उस शक्ति से राधारानी के प्रेम में जो शक्ति है वो मुझे विवल कर रही है। वो शक्ति तो मुझे पता नहीं कि राधारानी के प्रेम में कितना बल है, कितनी शक्ति है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। तो राधारानी का ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि राधारानी का जो प्रेम है वो तो मेरे गुरु के समान है, और मैं राधारानी के प्रेम रूपी गुरु के सामने मैं शिष्य नट। अच्छा नट माना नर्तक नाचने वाला। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो नाचने वाला हूँ शिष्य हूँ राधा रानी के प्रेम का, और राधा रानी जिस प्रकार मुझे नचाते हैं मैं उस प्रकार नाचता हूँ उसके प्रेम से विवल हो। सदा अमा नाना नृत्य नाचा है उद्वन, तो राधा रानी का प्रेम मुझे सदा सर्वदा नचा रहा। निज प्रेमास्पद है मोर है दे आह्लाद ते कोटि गुण राधा प्रेमास्पद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने प्रेम से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, तो उससे राधा रानी कोटि गुण प्रेम का आस्वाद करती है, आनंद का अनुभव करती है। मैं जितना आनंद का अनुभव करता हूँ मुझसे अधिक राधा रानी आनंद का अनुभव करती है। तो इस प्रकार राधा रानी ये प्रेम का, कृष्ण प्रेम का परम आश्रय है, आश्रय विग्रह है श्रीमती राधा रानी, और भगवान कृष्ण इस प्रेम के विषय विग्रह है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को जो कृष्ण प्रेम में जो आनंद प्राप्त होता है उसका आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए राधा रानी के प्रेम का विषय भगवान कृष्ण, और वो प्रेम आश्रय कहाँ पर कर रहा है? राधा रानी। इसलिए राधा रानी आश्रय विग्रह, प्रेम की स्थिति राधा रानी में है और प्रेम का लक्ष्य श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के कारण ही राधा रानी के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कृष्ण विषय विग्रह है और राधा रानी आश्रय विग्रह। तो राधा रानी को जिस प्रकार प्रेम से जो आनंद अनुभव होता है, कृष्ण प्रेम में जो आनंद अनुभव हो रहा है, तो कृष्ण विषय विग्रह होने के कारण उस आनंद का अनुभव कृष्ण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का विषय स्वयं कृष्ण है। इसलिए कृष्ण राधा रानी के प्रेम में जो आनंद प्राप्त होता है उसको कैसे अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकते। या राधा रानी के मन में जो प्रेम के विकार परिलक्षित होते हैं वो कृष्ण अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो विषय विग्रह है। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते हैं कि यदि मैं राधा रानी का भाव ग्रहण करूंगा तब जाकर इस प्रेम का आस्वादन मैं कर सकता हूं, क्योंकि राधा रानी की स्थिति को प्राप्त हुए बिना मैं कभी इस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को ग्रहण करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक राधा रानी के भाव को ग्रहण नहीं करते तब तक इस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते। तो ये है एक कारण कि आश्रय जातीय सुख प्राप्त होने के लिए भगवान कृष्ण जो कि विषय है, प्रेम के विषय है, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। ये उनके मन में एक कामना रह गई थी भगवान कृष्ण के मन, क्योंकि कृष्ण अवतार में वो राधा रानी के सुख का आस्वादन नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके मन में एक कामना रह गई थी कि कैसे मैं राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करूं। तो ये एक प्रथम कामना, श्राधया प्रणय महिमा कितृ शोभा मदीय सत्य जयनाद्भुत मधुरिमा कितृ पान एव। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः सोच रहे हैं, ये एक कारण हुआ राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। श्रीराधया प्रणय महिमा कितृ स्वान एवं सत्य देनाद्भुत मधुरिमा कितृ संवा मदीय। तो भगवान श्री कृष्ण के ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का और एक दूसरा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण ये माधुर्य का निलय, माधुर्य का मूर्तिमंत भंडार, और सारा जगत भगवान कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट होता है। यहां तक कि सारा जगत भगवान कृष्ण के माधुर्य के प्रति आकृष्ट होता है। और तो फिर श्रीमती राधा रानी और गोपियों के संबंध में क्या कहें, गोपियां और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के माधुर्य के प्रति आकृष्ट होती। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने माधुर्य के प्रति आकृष्ट हो जाते। तो भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है और उसमें जो मधुरिमा है उसके प्रति स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट हो रहा है। तो व्यक्ति अपना सौंदर्य स्वयं देख नहीं सकता, दूसरे लोग देख सकते हैं हम कितना सुंदर हैं या असुंदर हैं, तो दूसरे लोग कह सकते हैं या दूसरे लोग देख सकते हैं, दूसरे लोग अनुभव कर सकते हैं। हम स्वयं अपने सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकते कि हम कितना सुंदर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार द्वारका में अपने मणिमय स्तंभ में अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने स्वरूप का प्रतिफलन को देखते हैं मणिमय स्तंभ। तो अपने रूप को मणिमय स्तंभ में, क्योंकि उनके रूप का प्रतिफलन होता है, तो उसको देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अपरिकलित पूर्व कष्ट चमत्कार कार्य। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये तो मूर्ति देख रहे हैं मणिमय स्तंभ में, तो देख रहे हैं, कहते हैं कि इस प्रकार का सौंदर्य हमने कभी देखा नहीं था। अपरिकलित पूर्व कभी भी इस प्रकार के सौंदर्य का अनुभव मुझे नहीं हुआ। और ये जो सौंदर्य मणिमय स्तंभ में दिख रहा है ये तो चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। सुरति मम गरिया ये तो सौंदर्य माधुर्य पूरा, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सौंदर्य के प्रति सारा जगत आकृष्ट होता है। किंतु ये जो सौंदर्य मैं देख रहा हूँ इस मणिमय स्तंभ में, ये तो चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। और स्फुरति मम गरिया में ये समाधुर्य पर, ये माधुर्य ये मुझसे भी अधिक ये माधुर्य यहाँ प्रतिफलित हो रहा है। भगवान कृष्ण पहले इसको प्रतिफलन नहीं मान रहे, ये सोच रहे हैं कि किसी की मूर्ति, तो कह रहे हैं कि ये तो मेरे माधुर्य से ये माधुर्य और अधिक महनीय गरिमामय। तो इस प्रकार जब सोचते हैं पुनः उनको ध्यान आता है कि ये जो सौंदर्य है अयम अहम अपिहंत, कहते हैं कि ये सौंदर्य क्या मेरा है, ये सोच करके कहते हैं कि अयम अहम अपिहंत प्रेक्षा हम लुप्त देता है। कहते हैं कि ये जो सौंदर्य है ये क्या मेरा सौंदर्य है, अपने को देखते हैं फिर उस सौंदर्य को देखते हैं, कहते हैं कि ये क्या मेरा सौंदर्य है। तो इस सौंदर्य को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट होते हैं, अपने सौंदर्य को देखकर उस सौंदर्य के प्रतिफलन को मणिमय स्तंभ में देखकर आकृष्ट होते हैं। और उस सौंदर्य को बार बार देखने के लिए प्रेक्षय लुब्ध देता, बार बार देखने के लिए उनका चित्त उनका मन लुब्ध हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है बार बार देखने के लिए। और उस सौंदर्य को सर्वसंग उपभोक्तम काम ये राधिके, कि नित्य सदा सर्वदा उस सौंदर्य को उपभोग करने के लिए राधिका के समान, श्रीमती राधा रानी के समान उपभोग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कामना करते हैं। तो इस प्रकार क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होती है और उस सौंदर्य का आस्वादन वस्तुतः राधा रानी ही करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस भाव से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती है, इस प्रकार का आस्वादन दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य के प्रति आकृष्ट होकर श्रीमती राधारानी इतना भाव विह्वल हो जाती है कि भगवान कृष्ण के रूप सामने में वो तमाल वृक्ष को भगवान कृष्ण का रूप मानकर उनको तमाल वृक्ष को आलिंगन करती है, क्योंकि तमाल वृक्ष का जो वर्ण है ये भगवान कृष्ण के वर्ण के साथ समान है, इसलिए कृष्ण को तमाल वर्ण कहा गया, तमाल वृक्ष के वर्ण के समान कृष्ण का वर्ण। तो तमाल वृक्ष को श्रीमती राधारानी कृष्ण मानकर आलिंगन करती है, इस प्रकार वो कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट है और प्रतिक्षण उसी भाव में रहती है श्रीमती राधारानी। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरा जो माधुर्य है साध्यम जेना धूत मधुरिमा किद्र संभा मधीय, तो मेरा जो माधुर्य है ये कैसा है उसको अनुभव करने के लिए राधारानी कैसे अनुभव करती है मेरे माधुर्य, इसको जानने के लिए भगवान कृष्ण के मन में और एक लोभ उत्पन्न हुआ। ये द्वितीय लोभ है भगवान कृष्ण, द्वितीय कामना है। और जो तीसरा तीसरी कामना है कि सत्य देना भूत मधुरिमा किद्र सर्वा मधीय सौख्यम चास मदन भवत। तो श्रीमती राधारानी मेरे प्रेम में किस प्रकार सुख का अनुभव करते हैं इसको भी जानने के लिए भगवान कृष्ण के मन में ये लोभ उत्पन्न है कि श्रीमती राधारानी किस प्रकार के सुख का अनुभव करती भगवान कृष्ण के प्रेम। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं पूर्ण हूं और मैं सर्व आकर्षक होने के कारण मैं और किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, किंतु ये राधारानी का प्रेम मुझे आकर्षित कर रहा है और उस प्रेम के कारण तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मोरो रूपे अपायित तो है त्रिभुवन राधा और कृष्ण में मोर जुड़ाए न। तो मेरे प्रेम में राधारानी इतना आनंद का अनुभव करती है उस आनंद के अनुभव के कारण राधारानी के सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है, राधारानी का जो रूप सौंदर्य है उसमें वृद्धि होती है। अर्थात राधारानी जब आनंद का अनुभव करती है तो ये स्वाभाविक है कि उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो उसका रूप जो है चेहरा जो है ये मलिन रहता है, कभी कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके शरीर में दुख का प्रतिफलन देखा जा सकता है कि शरीर मुरझाया हुआ या चेहरा मुखमंडल मुरझाया हुआ है, लेकिन जब व्यक्ति आनंद में होता है तो उसके शरीर में तेज निकलता है और उसका शरीर बहुत आकर्षक हो जाता है आनंद। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब श्रीमती राधारानी मेरे प्रेम में आनंद का अनुभव करती है तो उनके शरीर का माधुर्य बहुत गुणों में वृद्धि प्राप्त हो जाता है उस आनंद के कारण, जिससे मैं जब राधारानी का दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय भी शीतल हो जाता है राधारानी के रूप का माधुर्य देखकर या उसका अनुभव करके मेरा हृदय शीतल हो जाता है, मैं भी आनंद का अनुभव करता हूँ। अमर दर्शन राधा सुखे अग्रह, किंतु मैं जितना आनंद का अनुभव करता हूँ मुझसे अधिक मुझे देखकर राधारानी आनंद का अनुभव करती है, अर्थात मेरे आनंद से राधारानी का आनंद और अधिक है भगवान कृष्ण का। तो इस प्रकार अमार संग में राधा पाए जाता सुख पाए जो आनंद सत्यमुखे बलि सब न पाए तार पंत। और राधारानी जो सुख का अनुभव करती है इसको यदि मैं सौ मुखों में इसका मैं वर्णन करूं फिर भी राधारानी के सुख का अंत को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक मुख में क्या, सत मुखों में यदि मैं राधा रानी के सुख का वर्णन करूं फिर भी सुख का अंत मैं प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार आमा है ते राधा पाए जजातीय सुख तहा आस्वादित आमी सदाई। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार के सुख का अनुभव करती है उसको आस्वादन करने के लिए मैं सदा सर्वदा उन्मुख रहता हूँ। तो राधा रानी के सुख को आस्वादन करने के लिए ये तीसरा लोभ हुआ भगवान के मन, भगवान कृष्ण के मन। किंतु इसको कैसे भगवान कृष्ण अनुभव कर सकते हैं? कहते हैं कि राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय से ही तीन सुख कभू न हो आस्वादन। तो जब तक मैं श्रीमती राधा रानी के भाव और शरीर की कांति को अंगीकार नहीं करता हूँ तब तक ये तीन प्रकार के सुख का आस्वादन नहीं हो सकता। क्योंकि राधा रानी के भाव में रहने से ही सुख का अनुभव हो सकता है और राधा रानी की कांति का भी ग्रहण करना आवश्यक है। अन्यथा यदि भगवान श्याम कांति में रहते राधा रानी की कांति या वर्ण को ग्रहण नहीं करते, केवल भाव को ग्रहण करते, तो जब कभी अपने ओर देखते उनको कृष्ण का ज्ञान होता, वो अपने को कृष्ण मानते। किंतु राधा रानी की कांति शरीर के वर्ण को ग्रहण करने के कारण, क्योंकि राधा रानी जिस प्रकार तत्व कंचन गौरांगी, राधा रानी के शरीर का वर्ण है तत्व कंचन वर्ण, इसलिए उनको गौरांगी कहा गया। तो भगवान कृष्ण इसलिए गौरांग महाप्रभु हुए, तत्व कंचन वर्ण धारण करके वो गौरांग हुए। राधा रानी के भाव गौरांगी के भाव और गौर अंग कांति को धारण करके वो चैतन्य महाप्रभु गौरांग हुए। तो ये उनके अवतार का अंतरंग कारण, ये तीन प्रकार के जो कारण है अंतरंग कारण। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए गौर वर्ण हुए, श्याम वर्ण ग्रहण नहीं, गौर वर्ण होकर और श्रीमती राधा रानी के भावों को ग्रहण करते हुए सदा सर्वदा कृष्ण के विरह का अनुभव करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा हा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के विरह में इस प्रकार नाम संकीर्तन करते हुए वो विरह का अनुभव कर रहे हैं। राधा रानी के भाव में वो कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे और कभी कभी इस प्रकार विरह का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होते थे, शरीर में रोमांच उत्पन्न होते थे और शरीर में कंप उत्पन्न होता था, नेत्रों से अश्रु की दृष्टि होती थी, अश्रु निकलते थे, स्वेद निकलते थे शरीर से, इस प्रकार शरीर कांपता था। तो इस प्रकार जो सात्विक विकार है प्रेम के अस्त्र सात्विक विकार उनके शरीर में परिलक्षित होते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है किंतु भक्त भाव में आए हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए। और राधा रानी के भाव में आकर राधा रानी के भाव में तो किस प्रकार कृष्ण से विरह का अनुभव करना है उसको सिखा रहे। और यही है वस्तु, तो हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण से विरह का अनुभव करना ये हमारे भक्ति की चरम सिद्धि है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने जिसकी शिक्षा प्रदान की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अवतार इसलिए महावदान्य अवतार कहा गया है। स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर उन्होंने कृष्ण से विरह का अनुभव करने के लिए सिखाया, स्वयं अपने जीवन में अनुभव करते हुए कृष्ण को सिखाया। और यही भक्ति की चरम पराकाष्ठा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में देखा गया। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन अवतरित हुए, भगवान कृष्ण आज के दिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, ये 1486 साल नवदीप धाम में मायापुर में अवतरित हुए और संध्या के समय अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जब संध्या के समय अवतरित हुए तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि जब निष्कलंक चंद्रमा गौर चंद्र नवदीप धाम में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु को गौर चंद्र कहा जाता है, तो जो चंद्रमा के समान बहुत सुंदर गौर वर्ण के हैं, इसलिए श्री कृष्ण के ब्रज रसम कहते हैं कि जब गौर चंद्र उदित हुए नवदीप रूपी उदयाचल में, तो फिर ये सकलंक जो चंद्रमा है इसकी क्या आवश्यकता रह गई, क्योंकि ये जो चंद्रमा हम देखते हैं आकाश में इसमें कलंक है, चंद्रमा में काला चिन्ह दिखा जाता है उसको चंद्रमा का कलंक कहा जाता है। तो ये तो आकाश में जो चंद्रमा है ये कलंकित है या सकलंक चंद्रमा है, और जब निष्कलंक चंद्रमा का उदय हो गया नवदीप धाम में, तो ये सकलंक चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, ये जानकर राहु ने क्या किया, इस चंद्रमा को ग्रास कर दिया। तो राहु ने ये सकलंक चंद्रमा को ग्रास करने के कारण चंद्र ग्रहण का अवसर आ गया, और उस चंद्र ग्रहण के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु जो कि युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए थे, और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए, किंतु उनके अवतार से पहले ही उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन कर दिया चंद्र ग्रहण के माध्यम, क्योंकि भारत में और विशेष रूप से वैदिक संस्कृति में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय लोग अन्य सारे कार्य को छोड़कर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। यह शास्त्र में विधान है कि ग्रहण के समय जो दान धर्म किया जाता है, जो भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है, तो उसका बहुत फल है, ग्रहण के समय उसका फल बहु गुणों में बढ़ जाता है, साधारण समय में हम जो करते हैं और ग्रहण के समय उसका फल और बढ़ जाता है, तो लोग इसलिए ग्रहण के समय सब नाम संकीर्तन करते हैं, सब हरी 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 बोलते हैं, हरी बोल ध्वनि से सारे नवदीप धाम में चारों ओर ये हरी बोल ध्वनि छा गई, जहां कहीं जाओ हरी बोल सुनाई पड़ता था, क्योंकि ग्रहण के समय लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते थे और गंगा में स्नान के लिए आते थे, और ग्रहण के समय तक गंगा के जल में खड़े होकर लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, और ग्रहण के बाद फिर स्नान करके जाते थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही जब ग्रहण लगा तो लोग सब हरी हरी बोलने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, तो गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। जब भगवान नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए आए थे तो उनके आविर्भाव उत्सव से नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया, तो चारों ओर लोग नदियां में अर्बुद अर्बुद लोग कहा गया, तो नाम संकीर्तन में लगे थे, यहाँ तक कि केवल हिंदू नहीं मुस्लिम लोग भी नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो बड़े आश्चर्य की कथा है। कि मुस्लिम लोग कैसे नाम संकीर्तन कर सकते हैं, उनको तो ये ग्रहण से कोई मतलब नहीं है। किंतु नदिया में जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने देखा कि अरबुद अरबुद संख्या में हिंदू लोग सब गंगा में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, सब सबके मुख से ये हरित ध्वनि निकल रही है, चारों ओर हरित ध्वनि में नवद्वीप भर गया। तो उसको देखकर ये मुस्लिम लोग उपहास करते थे, हिंदुओं परिहास करते थे, हिंदू लोग तो हरी 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 बोल रहे, ऐसा परिहास करके वे लोग भी हरी हरी बोल रहे मुस्लिम लोग। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हिंदू मुस्लिम सबके मुख से हरिनाम कहलाते थे, और इस प्रकार हरिध्वनि के बीच फाल्गुन पूर्णिमा की समय में श्री चैतन्य चंद्र का अवतार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा और माता सती माता के गर्भ में आए, तो उसके पहले जगन्नाथ मिश्र ने जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याएं हो चुकी थी, 8 कन्याएं हो चुकी थी जगन्नाथ मिश्र सती माता की चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले, और ये सारी कन्याएं जन्म लेकर उसके बाद मर जाती, कोई नहीं रही। 8 कन्याएं हुई फिर भी उनमें से कोई जीवित नहीं रही। तो बाद में जगन्नाथ मिश्र और सती माता ये बहुत दुखी हो गए, 8 संतान का जन्म हुआ, कोई जीवित महाप्रभु के चरणों में